धौला पुस्तक सातवी लेक्चर नंबर 11। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वच्छायाणम्, नमो लोए सौवसाहूणम्। जय उधर सेननाहो जेन महाकम्म पयडि पाहुड सेलो, बुद्धि सिरेणु धरियो समप्पियो फुफयंतस। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें द्वितीय खंड है खुद्दाबंध नाम का, और ये सातवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 77 पर हम आ गए, 77। अभी बंधकों की बात चल रही है और मार्गणाओं में, पहले गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा, गति इंद्रिय काय, अभी योग की बात चल रही थी। तो ये योग क्या है ऐसा पूछा था ना, मनोयोगी, वचन योगी और काय योगी किस कारण से होता है, तो उसमें क्षयोपशमिक लब्धि से बताया गया था। उस पर चर्चा समाधान हुआ कि इसको क्षयोपशमिक क्यों कहते हैं, क्योंकि आघाती कर्मों के उदय में होता है और उसका तो उदय चल रहा है, उसमें तो क्षयोपशम होता नहीं है। परंतु वहां उत्तर दिया था कि वीर्यांतराय कर्मों का वहां क्षयोपशम चल पाया जाता है, और उसका पाकर यानी वीर्य का जो क्षोभशम है उसके कारण जीव प्रदेशों का संकोच विकोच होता है, इसलिए उसमें वो घटित करके बताया था। उसके बाद उन्होंने तीन प्रकार के योगों में भी घटित किया था, मनोयोग में ये बात बताई थी पेज नंबर 76 पर लास्ट पैराग्राफ में। उसके ऊपर ये भी बताया था कि योग में क्षयोपशमिक भाव भी उपचार से माना है, ऐसे तो वो औदयिक भाव है, शरीर नाम कर्म के उदय में होता है। ये नीचे जो तीन प्रकार के योगों की बात बताई थी 76 पृष्ठ पर, मनोयोग, वचन योग और काय योग, वहां कहते हैं मनोवर्गना से निष्पन्न हुए यानी उत्पन्न हुए ऐसे द्रव्य मन को अवलंबन करके जो जीव का संकोच विकोच होता है उसको मनोयोग कहा था। और भाषा वर्गणा संबंधी पुद्गल स्कंधों का अवलंबन करके जो जीव प्रदेशों का संकोच विकोच होता है वह वचन योग बताया था। और चार प्रकार के शरीर का अवलंबन करके यानी वैतारिक, वैक्रिय, कारक, कारमाण, जीव प्रदेशों का संकोच विकोच होता है उसको कायोग कहा था। अब इस पर शंका समाधान यहां चलेगी, यहां से अपना आज का विषय शुरू हो जाता है 77 पृष्ठ पर। शंका पूछ रहे, दो या तीन योग एक साथ क्यों नहीं होते, क्योंकि हमने देखा था भले जीव को पंचेंद्रिय जीव है मन सहित वाले, उनके तीनों ही योग पाए जाते हैं, परंतु तीनों योग युगपद नहीं होते, एक समय में कोई एक योग पाया जाता है, इसलिए पूछते हैं क्यों नहीं होते। उसका समाधान, उस समाधान हुआ समाधान नहीं, क्योंकि उनकी एक साथ वृत्ति का निषेध है, इन्हें एक साथ वो नहीं पाए जाते। फिर शंकाकार पूछते कि अनेक योगों की एक साथ वृत्ति पाई जाती है, वृत्ति का अर्थ होता है ये प्रवृत्ति, मन वचन काय की प्रवृत्ति एक साथ पाई जाती है, प्रवृत्ति बात अलग है और योग बात अलग है। योग के कारण वो प्रवृत्ति चालू हो जाती है, वो चलती रहती तब तक योग पलटते रहते हैं। तो इसीलिए शंकाकार पूछते हैं, अनेक योगों की एक साथ वृत्ति यानी प्रवृत्ति तो पाई जाती है, उसका समाधान नहीं, क्योंकि इंद्रियों के विषय से परे जो जीव प्रदेशों का परिस्पंद है, यानी जीव के प्रदेशों का ये परिस्पंद जो है जिसको संकोच विकोच कह रहे हैं, वो तो इंद्रिय गम्य नहीं है। और ये जो हमें प्रवृत्ति देखी जाती है का अर्थ क्या है, वो इंद्रिय गम्य उसके क्रियाएं देखने में आती है, शरीर के कुछ प्रवृत्तियां, वचन बोलने रूप जो क्रिया, ये हमें ख्याल में आता है, परंतु तो योग है वो इंद्रिय गम्य नहीं है। फिर से इंद्रियों के विषय से परे यानी इंद्रियातीत हम जिसको कहेंगे, जो जीव प्रदेशों का परिस्पंद होता है उसका इंद्रियों द्वारा उपलब्धि होने में विरोध आता है, यानी अंदर कुछ आप कहेंगे कुछ ध्रुजना होता है, कुछ हो रहा है, वो भी स्पर्शन इंद्रिय का विषय हुआ, तो योग इंद्रियों के द्वारा नहीं गम्य है। जीवों के चलते समय जीव प्रदेशों के संकोच विकोच का नियम नहीं है, चलते समय ने गमन करते हुए, क्योंकि सिद्ध होने के प्रथम समय में जब जीव यहाँ से अर्थात मध्य लोक से लोक के अग्रभाग को जाता है, तब जीव प्रदेशों में संकोच विकोच नहीं पाया जाता, क्योंकि वो तो अयोग केवली गुण स्थान में वो अयोग हो गए है, यानी वो परिस्पंद रुक गया है, वो सिद्ध की पहली अवस्था में भले यहाँ से ऊपर तक सात राज्यों गमन हो रहा है, तो वहां प्रदेशों का संकोच या विकोच नहीं है। अब शंकाकार पूछ रहे हैं, उसका अवलंबन लेकर, पर वो अवलंबन लेकर जीव प्रदेश अवलंबन लेते हैं, वो भी आपके इंद्रिय गम्य नहीं है। नहीं, व्यवहार कथन नहीं है, क्योंकि उसमें योग में क्या हो रहा है, वहां परमाणु जो ग्रहण हो रहे उसके कारण, यानी उसका अवलंबन लेते हैं, ऐसा कहेंगे हम। निमित्त का कथन है ना ये, जीव क्यों कर रहा है वहां पर, क्योंकि उसके वो तो शरीर नाम कर्म का उदय है, और उस समय वो उसके द्वारा क्या हो रहा है, तो मन का वचन का यानी भाषा का और ये शरीर के जो पुद्गल स्कंद है उसका अवलंबन लेकर जीव के प्रदेशों का परिस्पंद हो जाता है। अब फिर पूछते हैं, मनोयोग शावश्रमिक कैसे है, समाधान बतलाते हैं, यतः यतने क्योंकि वीर्यांतराय कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के सत्वोपशम से व देशघाती स्पर्धकों के उदय से, अपनी भाषा में वीर्यांतराय के क्षोभशम से, क्योंकि वही तो परिभाषा है ना उसकी, नो इंद्रियावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से, उन्हीं स्पर्धकों के सत्वोपशम से, देशघाती के बरोबर है यहाँ लिखा है, देशघाती का तो उदय है ही, वीर्यांतराय के बारे में देशघाती का उदय है, नो इंद्रियावरण ने मन संबंधी कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से, यहाँ उदय क्षय लिखा, ऊपर सत्वोपशम उसी के लिखा है, सत्वोपशम कहो या उदय क्षय कहो एक ही बात है, उन्हीं स्पर्धकों के सत्वोपशम से, यह दोनों बातें बताई, तथा देशघाती स्पर्धकों के उदय से, यानी अपनी भाषा में वीर्यांतराय और नौ इंद्रियावरण के क्षोभशम से, दोनों का क्षोभशम चल रहा है, और मन पर्याप्ति से पर्याप्त हुए जीव के, ये भी कंडीशन है, मनोयोग उत्पन्न होता है, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में संगी जीवों को भी मनोयोग नहीं है, मन पर्याप्ति पूरी होने पर मनोयोग शुरू हो जाता है, इसलिए उसे क्षोभशमिक भाव कहते हैं, यानी यहाँ उसका भी योगदान है साथ में, वो पाया जाता है साथ साथ, इसलिए उसको क्षयोपशमिक कहते हैं, पहले वो भी बता चुके थे, ये क्षयोपशमिक भी उपचार से कह रहे, वैसे वहाँ योग एक्चुअली किस कारण है, तो शरीर नाम कर्म के उदय से, इसलिए उसको औदयिक भी कहा था, अभी हमने 76 पेज पर देखा था। उसी प्रकार अब वचन योग की बात बताएंगे। वीर्यांतराय कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के क्षोभ सत्वोपशम से व देशघाती स्पर्धकों के उदय से, जिह्वेन्द्रियावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से वो उन्हीं के सत्वोपशम से तथा देशघाती स्पर्धकों के उदय से, इतना होने पर भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए स्वर नाम कर्मोदय सहित जीव के वचन योग पाया जाता है। इसलिए वचन योग भी क्षौपशमिक है। अब काय योग के लिए वीर्यांतराय कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के सत्वोपशम से व देशघाती स्पर्धकों के उदय से काय योग पाया जाता है, इसलिए काय योग भी क्षौपशमिक है। वहां तो मनोयोग में मन पर्याप्ति की कंडीशन बताई थी और वचन योग में भाषा पर्याप्ति की कंडीशन बताई, ऐसे काय योग में नहीं कहेंगे, क्योंकि कर्माण भी काय योग है और अपर्याप्त में औदारिक मिश्र भी काय योग है, इसलिए वहां कुछ शरीर पर्याप्ति की बात नहीं उठाई उन्होंने। अब पूछते हैं अजोगी नाम कदम भवदी। जीव अयोगी किस कारण से होता है, ये सब जरूरत है। जहां जहां प्रश्न चिन्ह है ना, प्रश्न चिन्ह डालना, प्रश्न चिन्ह करो इसमें हिंदी में। यहां पर नय और निक्षेपों के द्वारा अयोगीपने की पूर्ववत चालना करनी चाहिए। जैसे हम किसी भी विषय पर वे नय और निक्षेप लगाते हैं, जैसे नारकी पर उन्होंने दिखाए थे, ऐसे यहां पर भी सर्वत्र लगाना। उसका उत्तर खैयाए लब्धिये, क्षायिक लब्धि से जीव अयोगी होता है। अब क्षायिक लब्धि ने कौन से कर्म का क्षय तो कहेंगे, योग के कारणभूत शरीरादि कर्मों के, शरीरादि कर्म करते थे शरीर नाम कर्म, निर्मूल क्षय से उत्पन्न होने के कारण अयोगी जीव के क्षायिक लब्धि होती है। अब ये योग मार्गणा हो गई, वेद मार्गणा की बात पूछेंगे। वेदानुवादेन इत्थि वेदो पुरिस वेदो नवसे वेदो नाम कदम भवदी। वेद मार्गणानुसार जीव स्त्री वेदी, पुरुष वेदी और नपुसक वेदी किस कारण से होता है। अब ये तो प्रश्न पूछा गया है, अब ये प्रश्नकर्ता का भाव और खोल रहे कि उसमें क्या संशय उत्पन्न हो सकता है। तो क्या औदयिक भाव से होता है, क्या औपशमिक भाव से होता है, क्या क्षौपशमिक भाव से, क्या क्षायिक भाव से, क्या पारिणामिक भाव से जीव स्त्रीवेदी आदि होता है। ऐसा मन में विचार कर स्त्रीवेदी आदि किस कारण से होता है, यह प्रश्न किया गया है। इस प्रकार के संशय का विनाश करने के लिए आचार्य आगे का सूत्र कहते हैं। इसमें लिखते हैं 79 पेज पर, चरित्त मोहनीयस्य कम्मस्य उदयेन इत्थि पुरिस नवुंसे वेदा। चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुसक वेद होते हैं। ये तो चारित्र मोहन में तो कितनी सारी प्रकृति आ गई है ना, इसलिए भी शंकाकार पूछते हैं। चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से स्त्रीवेद आदि होते हैं, ऐसा सामान्य से कह देने पर समस्त चारित्र मोहनीय के उदय से तीनों वेदों की उत्पत्ति का प्रसंग आता है, क्योंकि चारित्र मोहनीय कितने हैं कर्म, 25 है चारित्र मोहनीय। मोहनीय टोटल मोहनीय वो 28 है, दर्शन मोहनीय के 3, चारित्र मोहनीय के 25 है, 16 कषाय, 9 कषाय। इसलिए शंकाकार पूछता है चारित्र मोहनीय कहने से तो सभी चारित्र मोहनीय के उदय से, और चारित्र मोहनीय है तो तीनों वेद उत्पन्न हो जाएंगे। शंका समझ में आई, चारित्र मोहनीय है तो सबके लिए चारित्र मोहनीय कहा तो तीनों ही वेद उत्पन्न होने चाहिए एक साथ, किंतु ऐसा नहीं, ये स्वयं ही उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि परस्पर विरोधी तीनों वेदों की एक ही कारण से उत्पत्ति मानने में विरोध आना है। यानी हर एक का वो जुदा जुदा स्वरूप है, और चारित्र मुनि एक ही कर्म कहने से वो तीनों की उत्पत्ति एक ही कारण से हो, ये बात नहीं संभव। इसलिए यह सूत्र घटित नहीं होता, ऐसा उनका पूछना है। समाधान, नहीं, क्योंकि सामान्य से कहे गए भाव अपने विशेषों में रहते हैं। यानी चारित्र मोहिनी कह ही दिया, परंतु उसमें स्पेसिफिक है तीनों के लिए जुदे जुदे। इस न्याय के अनुसार यद्यपि सामान्य से कहा गया है तो भी उनकी विशेष रूप उपलब्धि होती है, क्योंकि सामान्य चारित्र मोहिनी से तीनों विरुद्ध वेदों की उत्पत्ति होने में विरोध आता है। अतः स्त्रीवेद के उदय से स्त्रीवेद उत्पन्न होता है, पुरुष वेद के उदय से पुरुष वेद और नपुसक वेद के उदय से नपुसक वेद उत्पन्न होता है, यह सिद्ध हुआ, क्योंकि उसकी अपनी अपनी प्रतिपक्षी प्रकृतियों के उदय में वो हो जाता। प्रतिपक्ष नहीं, उसके प्रतिपक्ष नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि वहां आवरण नहीं, आवरण में प्रतिपक्ष कहेंगे। यहाँ तो उसकी अपनी अपनी जो प्रकृति है। अब शंकाकार पूछते हैं, स्त्रीवेद द्रव्य कर्म से उत्पन्न हुए परिणाम को क्या स्त्रीवेद कहते हैं? यानी स्त्रीवेद ये द्रव्य कर्म चारित्र मुनि का भेद है, जिसको हम कहेंगे वो तो नौ कषाय कर्म, तो उसका परिणाम जो हुआ, जीव का जो परिणाम हुआ, जिसको हम भाव वेद कहते हैं। यानी द्रव्य वेद के उदय में जो भाव वेद हुआ उसको स्त्रीवेद कहते हैं, या शरीर की रचना को स्त्रीवेद कहते हैं, ये इनका प्रश्न है। स्त्रीवेद द्रव्य कर्म से उत्पन्न हुए परिणाम को क्या स्त्रीवेद कहते हैं, या नाम कर्म के उदय से उत्पन्न स्तन जघन योनि आदि से विशिष्ट शरीर को स्त्रीवेद कहते हैं? ये विशिष्ट शरीर यानी तो द्रव्य वेद हम जिसको हम कहेंगे, तो यहाँ स्त्रीवेद से किसको आप कह रहे हैं, भाववेद को के द्रव्यवेद को? शरीर को तो यहाँ स्त्रीवेद मान नहीं सकते, क्योंकि वैसा मानने पर चारित्र मोह के उदय से वेदों की उत्पत्ति का प्ररूपण करने वाले इस सूत्र से विरोध आता है, क्योंकि चारित्र मोह के उदय में तो शरीर की रचना नहीं हुई है, और शरीर सहित जीवों के अपगत वेद पने के अभाव का भी प्रसंग आता है। यदि चारित्र मुनि के उदय से वो तो शरीर को स्त्रीवेद मानेंगे, तो शरीर का शरीर तो चौदहवें गुण स्थान तक है, तो वो जीव कभी अपगत वेदी हो नहीं सकता यदि शरीर को ही मानेंगे तो, क्योंकि द्रव्य वेद है वो अंत तक रहता है चौदहवें गुण स्थान तक, और भाव वेद नष्ट होकर अपगत वेद हो सकता है, वो बातें बन नहीं सकती अगर शरीर को मानेंगे तो। प्रथम पक्ष यानी शरीर को स्त्रीवेद मानने वाला प्रथम पक्ष तो बनता नहीं, क्योंकि एक में कार्य कारण भाव होने में विरोध आता है। ये तो शंकाकार स्वयं ही सब उठा रहे हैं। उसका समाधान इस शंका का परिहार कहते हैं, द्वितीय पक्ष तो बनता नहीं, क्योंकि वैसा हमने स्वीकार नहीं किया। कौन सा? चारित्र मोनी के उदय से वेदों की उत्पत्ति का करेंगे तो अपगत वेद होगा ही नहीं, तो कहते ऐसा तो उसको स्वीकार तो है ही नहीं है। तथा प्रथम पक्ष में कहा गया दोष संभव नहीं है, कहे गए नहीं, कहा गया दोष संभव नहीं है। वहां क्या दोष बताया था? कि द्रव्य कर्म के उत्पन्न हुए परिणाम को बताना के शरीर को बताना, तो उसमें वो जो दोष उन्होंने घटित किया था, तो कहते वो बनता नहीं। क्यों नहीं बनता? क्योंकि परिणाम से परिणामी कथनचित भिन्न होने से एकत्व नहीं पाया जाता, क्योंकि चारित्र मुनि का उदय तो कारण है और उसका उस कर्मोदय से विशिष्ट स्त्रीवेदी कहने वाला जीव कार्य है। यानी जीव को स्त्रीवेदी कहते हैं क्योंकि वहां चारित्र मोहिनी का उसका स्त्रीवेद का उदय है। चूंकि विवक्षित कर्मोदय से उस पर्याय से विशिष्ट वह जीव उत्पन्न हुआ है, यानी विवक्षित कर्म उदय ने मान ले तभी स्त्री वेद के उदय से, उस स्त्री पर्याय से विशिष्ट वह जीव उत्पन्न हुआ है, अतएव यहाँ कारण कार्य भाव विरोध को प्राप्त नहीं होता, इसी प्रकार शेष वेदों के विषय में भी कहना चाहिए। फिर शंका, शेष क्षायोप शमिक, वो क्षमिक हुआ है, शमिक करो, कहते शेष क्षायोपशमिक आदि भाव भी तो यहाँ संभव है, जैसे योग में उन्होंने अन्य बातें घटित की थी, तो यहाँ पर भी क्षायोपशमिक आदि भाव, शेष क्षायोपशमिक आदि भाव यानी कौन से, औदयिक भाव भी है, अन्य औदयिक भाव भी है, क्षायोपशमिक वो भले मिथ्या ज्ञान हो या सम्यक ज्ञान हो वो भी भाव है, वीर्यांतराय के भी क्षायोपशमिक भाव है, तो उन भावों से वेदों का निर्देश क्यों नहीं किया, उनको कारणभूत क्यों नहीं कहा। समाधान, नहीं किया क्योंकि वेद निमित्तक परिणाम में क्षायोपशमिकादि परिणामों का अभाव है, यानी वेद परिणाम जुदे है और वो क्षायोपशमिक परिणाम जुदे है, तथा वेद विशिष्ट जीव द्रव्य में स्थित, यानी विशिष्ट वेद से युक्त जीव द्रव्य है उसमें पाए जाने वाले शेष भावों के तीनों वेदों में साधारण होने से, कोई भी वेद वाला हो उसमें वो तो ज्ञान दर्शन वीर्य आदि तो साधारणपणे पाए जाते हैं, वेद के कारण उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए उन्हें विवक्षित वेद का हेतु मानने में विरोध आता है, यानी ज्ञानावरण का क्षोभशम चल रहा है, वीर्यांतराय का क्षोभशम चल रहा है, परंतु उसके स्त्री वेद वाला होता है कि पुरुष वेद, तो सबके वो पाया जाता है, इसलिए उनके कारण उनमें डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्यों है परिणाम में, उस पर्टिकुलर वेद कर्म के उदय में, इसलिए अन्य कर्मों को कारण नहीं कहा। अब पूछते हैं, अवगत वेदों नाम कदम भवती, अपगत वेदी किस कारण से होता है, अपगत वेदी यानी जिसके अभी वेद नहीं रहा, परिणाम ऐसे नहीं रहे और कर्म का वह उदय भी नहीं रहा, यहाँ नए निक्षेप और भावों का आश्रय कर, यानी सात नए लगाए थे, चार निक्षेप लगाए थे और पांच भावों में से कौन सा है ये परिणाम, पूर्व के समान चालना करना चाहिए। अब अपगत वेदी कब होता है, तो श्रेणी में होता है, तो श्रेणी में कौन से भाव है वो यहाँ बताएंगे। कहते उमी आए खई आए लद्धि है, औपशमिक व क्षायिक लब्धि से अपगत वेद होता है, विवक्षित वेद के उदय से उपशम श्रेणी पर चढ़कर, क्या कहना चाहते हैं, तीनों वेद में से कोई भी वेद हो तो वो श्रेणी चढ़ सकता है, कंडीशन तो द्रव्य से पुरुष होना चाहिए, तो मुनिराज एक क्षपक श्रेणी चढ़ेंगे तो उनमें से तीनों वेद में से किसी वेद का उनके उदय है, तो विवक्षित वेद के उदय से उपशम श्रेणी पर चढ़कर मोहनीय कर्म का अंतर करके, ये मोहनीय का कर्म का अंतर कौन से गुणस्थान में होता है अभी हमने पढ़ा था छठी पुस्तक में, हाँ हा, लक्ष्मी गुणस्थान पूछ रहे हम, नवे में अंतर होता है मोहनी कर्म, यानी नवे का संख्यात बहुभाग जाने पर संख्यात वा भाग शेष रहता है तब वो अंतर करता है, कितने कर्मों में अंतर करता है, इक्कीस प्रकृति है चारित्र मोहनी की 21, वो दर्शन मोहनी का करता है, वो तो सातवें गुणस्थान में दर्शन वो द्वितीय उपशम किया था उसकी बात नहीं है, उपशम श्रेणी में औपशमिक चारित्र करता है तो चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों में अंतर कर देता है, यथा योग्य स्थान में जब अंतर किया तो जिस वेद का उदय है उसकी प्रथम स्थिति बनी थी और एक कोई जिस कषाय का उदय उसकी भी प्रथम स्थिति बनी थी, आपको याद होगा तो दो प्रकृतियां उदय रूप थी तो उसके अंतर्मूर्त स्थिति बनाई थी, और बाकी अनुदय रूप की आवली प्रमाण स्थिति बनाई थी। एक वेद और एक कषाय, जिस वेद से और जिस कषाय से चढ़ता है उसकी प्रथम स्थिति बनाई। यथा योग्य स्थान में विवक्षित वेद के उदय उदीर्ण अपकर्षण उत्कर्षण पर प्रकृति संक्रम स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक के बिना जीव में जो पुद्गल स्कंधों का अवस्थान होता है उसे उपशम कहते हैं। यानी यहाँ जो उपशम हो रहा है उसमें क्या होता है, उसमें हमने देखा पहले नपुसक वेद का उपशम होता है, स्त्री वेद का उपशम होता है, पुरुष वेद का उपशम होता है, जो जिसका उदय है उसके साथ जो उसमें डिफरेंसेस है वो भी बताए थे। अब यहाँ क्या कहते हैं, उपशम होता है ना, क्या कहते हैं इसको, सर्वोपशामना कहते हैं। उसमें किस किस का देखो, उदय उदीर्णा अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण स्थिति कांडक अनुभाग कांडक ये सब उसके रुक जाते हैं, इसमें से कुछ नहीं होता, ना उसका उदय होता है ना उदीर्ण होते है ना संक्रमण होता है ना अपकर्षण होता है ना उत्कर्षण होता है। तो क्या है, उदय के अयोग्य उसको बनाया जाता है। केवल उदय का अयोग्य नहीं है, क्योंकि जब दर्शन मोहनी की उपशमना हुई थी उसमें उसका संक्रमण रुका नहीं था, मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति रूप संक्रमण चलता रहता है औपशमिक सम्यक्त्व में, ऐसे औपशमिक चारित्र में नहीं। जिसका जिसका उपशम हो जाता है उसका उदय उदीर्णा तो रुकता ही रुकता है, उसका संक्रमण भी रुक जाता है, अपकर्षण सब कुछ रुक जाते हैं उसके, ये इसकी विशेषता है। तो क्या होता है, पुद्गल स्कंदों का अवस्थान होता है, वो तो सत्ता में पड़े रहते हैं, उसे उपशम कहते हैं। उस समय जीव की जो वेद के अभाव रूप लब्धि है उससे यथा अपगत वेद होता है, इस कारण उपशम लब्धि से अपगत वेद होता है यह कहा गया है। यानी वहां कर्म उदय रूप है ही नहीं है, और यहाँ जीव के भाव भी उस परिणाम को पहुंच गए अपगत वेद वाले। अथवा अब क्षपणा की बात करेंगे, विवक्षित वेद के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़कर, यानी ये तीनों वेद के उदय से उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है, क्षपक श्रेणी भी चढ़ सकता है, अंतरकरण करके, ये अंतरकरण दोनों श्रेणियों में होते हैं, यथा योग्य स्थान में, क्योंकि उसकी पूरी डिटेल तो छठे पुस्तक में बता चुके थे कैसे क्या होता है, यहाँ तो उसकी क्षपणा हो जाती है, पहले नपुसक वेद की, फिर स्त्री वेद की, फिर पुरुष वेद छेनो कषाय वगैरह के। तो यथा योग्य स्थान में विवक्षित वेद संबंधी पुद्गल स्कंधों के स्थिति और अनुभाग सहित जीव प्रदेशों से निशेषता दूर हो जाने को क्षय कहते हैं। पुद्गल स्कंद लिया, वो प्रकृति भी लिए और उसके प्रदेश भी लिए, पुद्गल स्कंद पूरा ही ले लिया, और उस स्थिति और अनुभाग सहित नष्ट हो जाना, दूर हो जाना, उसको कहेंगे क्षय। उस अवस्था में जो जीव का परिणाम होता है वह क्षायिक भाव है। उपशम में भी उदय रूप अवस्था नहीं थी इसलिए वो उपशम भाव था, वहां पर जीव का अपगत वेद परिणाम तो वहां पर भी था, और यहाँ तो सत्ता में से ही नष्ट हो गए, तो यहाँ पर भी जो जीव का परिणाम है उस भाव को क्षायिक भाव कहते हैं। उस भाव की लब्धि को, लब्धि ने प्राप्ति, क्षायिक लब्धि कहते हैं। उस क्षायिक लब्धि से अपगत वेद होता है। अब शंका, वेद का अभाव और वेद के अभाव में होने वाली लब्धि यानी वेद का अभाव, यानी वो तो कर्म के उदय का अभाव भी ले सकते हैं हम, या कर्म का अभाव, या यहाँ जीव के परिणाम में भी वेद का अभाव और वेद के अभाव में होने वाली लब्धि, ये दोनों जब एक ही काल में उत्पन्न होते हैं तब उनमें आधार आधेय भाव या कार्य कारण भाव कैसे बन सकता है, समझ नहीं। क्योंकि समान काल में उत्पन्न होने वाले छाया और अंकुर में कार्य कारण भाव देखा जाता है, तथा घट की उत्पत्ति के काल में ही कुशूल का अभाव देखा जाता है, इसलिए इन दोनों के एक काल में कोई विरोध नहीं आता। क्या कहना चाहते हैं? हम देखते हैं ना, एक ही समय में ये उत्पाद व्यय ध्रुवता है। तो व्यय किसका है? पूर्व पर्याय का व्यय और ये नई पर्याय का उत्पाद एक ही समय में है, दो जुदे जुदे हैं, तो दोनों एक काल में होने में कोई विरोध नहीं आता है। यहाँ उसके लिए उदाहरण दिया, कुशुल का अभाव और घट की उत्पत्ति एक ही समय में एक ही काल में देखी जाती है। कुशुल यानी वो घट की पूर्व अवस्था, कुशुल उसमें कहते स्थास कुशुल वगैरह, उसके अलग अलग नाम बताए। जो पिंड था मिट्टी का, वो चाक पर रखा, तो उसमें से जो घट के पूर्व अवस्था, उसको कुशुल कह दिया। फिर शंका, तीनों वेदों संबंधी द्रव्य कर्मों के क्षय से, ये वेद नाम का जो कषाय कर्म था, नौ कषाय कर्म, उसके क्षय से भाव वेद का अभाव भले ही हो, क्योंकि कारण के अभाव से कार्य का अभाव होना भी न्याय संगत है। यानी जब क्षय होता है तो हम मान्य करते हैं, ये शंकाकार कह रहे हैं कि वहां वो अपगत वेदी हो गया, तो उसको तो हम न्याय से मानते हैं। परंतु किंतु उपशम श्रेणी में त्रिवेद संबंधी, तीनों वेद संबंधी पुद्गल द्रव्य स्कंधों के रहते हुए, यानी वो सत्ता में पाए जाते हैं, ये जो सत्ता में पाए जाते हैं, फिर से पढ़ते इसको। प्रश्न क्या है उसका कि क्षपक श्रेणी में तो द्रव्य कर्म का क्षय हो जाता है, तो वहां तो भाव वेद का भी अभाव मानने में हमारा कोई विरोध नहीं है, वो न्याय संगत है। परंतु इनका क्या कहना है, उपशम श्रेणी में तो पुद्गल स्कंध पड़ा है, वहां पर उपशमित है, सत्ता है उसकी, तो वहां अभाव वेद का अभाव घटित नहीं होता, ये उनका प्रश्न है। क्योंकि कारण के सद्भाव में कार्य का अभाव मानने में विरोध आता है, यानी वो द्रव्य कर्म का सद्भाव है तो उसका कार्य भी होने दो ना, भाव वेद होता है ऐसा क्यों नहीं कहते, ये उनकी शंका है। यानी कर्म के केवल सत्ता में पड़ा है इसलिए उसका फल नहीं मिलता है, उसका उदय हो तब उसका फल मिलता है, यही कहते नहीं। क्योंकि जिनकी शक्ति देखी जा चुकी है ऐसी औषधियां, यानी जिनकी शक्तियां हमें पता है, हमने देख चुके हम उसकी बात, यानी इट्स वेल नोन, जब किसी आम रोग सहित अर्थात अजीर्ण के रोगी जीव को दी जाती है, तब उस अजीर्ण रोग से उन औषधियों की वह शक्ति प्रतिहत हो जाती है, यानी नष्ट हो जाती है। क्या कहना चाहते हैं, जिस औषधि का जो गुणधर्म है जो मालूम है सबको, परंतु किसी विशिष्ट रोगी को देने पर वो रोग के कारण वो शक्ति निष्प्रभ हो जाती है, वो औषधि काम नहीं करती है। तो कहते वो शक्ति प्रतिहत हो जाती है, अतः वे अपने कार्य सहित कारण रूप से नहीं पाई जाती, उसी प्रकार प्रकृति में जानना चाहिए। उस रोग की थी वो औषधि नहीं है, किसी रोग में वो पर्टिकुलर औषधि काम नहीं करती है। हाँ, उस रोग के लिए दी जा चुकी है ऐसी नहीं, जिनकी शक्ति देखी जा चुकी है ऐसी औषधियां, यानी वो अजीर्ण है तो उसको एब्सॉर्प्शन ही नहीं होगा उन औषधियों का, तो उसका असर भी कैसे होगा। आगे बढ़ते हैं, कषायाणुवादेन, अभी कषाय मार्गणा की बात, क्रोध कसाई, माण कसाई, माय कसाई, लोभ कसाई नाम कदम भवदी। कषाय मार्गणानुसार जीव क्रोध कषाई, मान कषाई, माया कषाई और लोभ कषाई किस कारण से होता है, प्रश्न चिन्ह डालो जहां जहां प्रश्नात्मक सूत्र है ना, उन्होंने प्राकृत में डाले हैं, हिंदी में नहीं डाले। क्रोध दो प्रकार का है, द्रव्य क्रोध और भाव क्रोध। द्रव्य क्रोध यानी क्रोध नाम का जो कर्म है, जो हम कहते हैं अनंत अनुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन। भाव क्रोध की उत्पत्ति के निमित्त भूत द्रव्य को द्रव्य क्रोध कहते हैं। ये द्रव्य को यानी वो पुद्गल स्कंध को, वह द्रव्य क्रोध दो प्रकार यानी भाव क्रोध जीव का परिणाम है और द्रव्य क्रोध वो पुद्गल जो है उसका उदय, उसको हम कहेंगे नहीं द्रव्य क्रोध। वह द्रव्य क्रोध दो प्रकार का है, कर्म द्रव्य और नो कर्म द्रव्य। कर्म द्रव्य बंध उदय और सत्व के भेद से तीन प्रकार का है, जिसको हम कर्म कह रहे हैं। क्रोध के निमित्त भूत क्या कहें, पहले यह वाक्य पढ़ते हैं। कर्म द्रव्य बंध उदय और सत्व के भेद से तीन प्रकार का है, यानी जो हम कहते हैं ना वो तो चार प्रकार के जो क्रोध पाए जाएंगे अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन, उसका हम डिफरेंस नहीं करेंगे तो सामान्य से उसको क्रोध कर्म कहेंगे। तो क्रोध कर्म का बंध होता है, बंधने के बाद सत्ता में पड़ा रहता है उसको सत्व कहेंगे, और जब वो जीव प्रदेशों को छोड़कर कर्म से अकर्म रूप अवस्था हो जाती है तब उसको उदय कहेंगे, और तब उसका वो फल मिल जाता है जीव को। तो कहते ये जो कर्म द्रव्य है यानी क्रोध की, क्रोध कर्म द्रव्य की बात चल रही है ना, पर क्रोध नाम का जो कर्म है वो बंध उदय और सत्व के भेद से तीन प्रकार का है, और क्रोध के निमित्त भूत जिस नौ कर्म द्रव्य ने नैगम नय के अभिप्राय से क्रोध संज्ञा प्राप्त की है वह दो प्रकार का है, सचित्त और अचित्त। ये सब क्रोध कषाय जिस जीव के होते हैं वह क्रोध कषाय है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, नौ कर्म किसको कहेंगे, यानी क्रोध को उत्पन्न करने वाले बाह्य कारण उसको भी उसके नौ कर्म कहते हैं। उसमें भी सचित्त और अचित्त के भेद से दो प्रकार करेंगे, कोई अचित्त यानी कोई जड़ चीज देखकर भी उसके कारण यहाँ क्रोध हुआ, पर वहां तो द्रव्य कर्म का उदय होता है तो उसका वो नौ कर्म कहने में आता है बाह्य कारण। प्रस्तुत सूत्र में यह बात पूछी गई है, ये तो प्रश्न को पूछ रहे हैं ना कि विवक्षित क्रोध कषाय कैसे अर्थात किस प्रकार से होता है, यानी द्रव्य कर्म के उदय से होता है कि क्या होता है। इसी प्रकार शेष कषायों का भी कथन करना चाहिए। अविवक्षित कषायों का निवारण करके कषायों का ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र आया है। यहाँ कहते हैं चरित्र मोनियस कम्मस उदयन, चारित्र मोनिय कर्म के उदय से जीव क्रोध कषाई आदि होता है, यानी हर एक के लिए वो सब प्रश्न एक साथ सब पूछे गए थे, क्रोध कषाई क्यों होता है, मान कषाई क्यों होता है, तो चारित्र मोनिय कर्म के उदय में। अब ये वही पर प्रश्न पूछेंगे जैसे वेद में पूछे थे, वहां पर भी चारित्र मोनी कहा था, पर चारित्र मोनी कहने से उसके विशेष भेदों की चर्चा उसमें गर्भित थी। ऐसे यहाँ पर सामान्य से निर्देश किए जाने पर भी, यानी सामान्य कथन क्या किया चारित्र मोनी कर्म, यहाँ विशेष की उपलब्धि हो जाती है यानी उसे विशेष जाना जाता है, क्योंकि सामान्य निर्देश विशेषों में भी घटित होते हैं ऐसा न्याय है। जो सामान्य कथन है वो विशेष में भी घटित होता है, जैसे हम कहते ना कर्म का बंध कितना है मैक्सिमम, तो 70 कोड़ा कोड़ी, मतलब वो तो केवल मिथ्या तो कर्म में घटित होता है, तो उसका वो स्पेसिफिक है, विशेष है। अतः क्रोध कषाय के उदय से क्रोध कषाय, मान कषाय के उदय से मान कषाय, माया कषाय के उदय से माया कषाय और लोभ कषाय के उदय से लोभ कषाय होता है, यह बात सिद्ध हो जाती है। यह हर एक मार्गणा के भेदों की यहाँ चर्चा चल रही, क्यों होता है, क्यों होता है इस तरह। अकषाय नाम कदम भवदी, जीव अकषाय किस कारण से होता है, प्रश्न चिन्ह डालो यहाँ पर। पूर्वोक्त कषायों में से किस कषाय के अभाव से जीव अकषाय होता है, यह बात यहाँ पूछी गई है। विवक्षित अकषाय के ग्रहण कराने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। देखो कषाय मार्गणा, कषाय जब कहेंगे तो उसमें क्रोध मान माया लोभ सभी वो उस वाले जीव लिए। अकषाय कहने से चारों ही कषायों का जहां अभाव है उसको हम कहेंगे अकषाय, यानी वहां कोई कषाय कर्म भी नहीं और नो कषाय तो उसके पहले ही चले जाते हैं, है ना। तो यहाँ बता रहे उवसमी आए खैयाए लब्धिये, औपशमिक व क्षायिक लब्धि से जीव अकषाय होता है, वेद में ऐसा ही कहा था उन्होंने। परंतु वेद में अपगत वेदी होने के लिए वो पर्टिकुलर वेद मार्ग जो जिस वेद का उदय था उसकी बात वहां लेनी थी, उसका उपशम या क्षय लेना था। यहाँ जो कषाय कर्म है उसका उपशम या क्षय लेना चाहिए। चारित्र मुनि के उपशम से और क्षय से जो लब्धि उत्पन्न होती है, लब्धि हमने कहा था उस परिणाम की प्राप्ति, उसी से अकषाय पना उत्पन्न होता है। शेष कर्मों के क्षय व उपशम से अकषाय पना उत्पन्न नहीं होता। शेष कर्म ने ना दर्शन मुनि के क्षय से वो अकषाय पना होता है, ना ज्ञानावरण के क्षय से होता है, ना अन्य कोई उसके कारण नहीं है, क्योंकि उस जीव के तत्प्रायोग्य औपशमिक या क्षायिक लब्धियां उत्पन्न नहीं होती, यानी अन्य कर्मों के कारण ये नहीं होती है। ये कषाय मार्गणा हो गई। अब ज्ञान मार्गणा की बात करेंगे। ज्ञान मार्गणा में जो उपयोग की अपेक्षा ज्ञान के भेद पाए जाते हैं, तीन तो कुज्ञान होते हैं, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान, और पांच सम्यक ज्ञान है। तो नानानुवादेन मदि अन्नानि सुद अन्नानि विभंग नानि आभिनिभोय नानि सुद नानि ओहि नानि मनपज्जव नानि नाम कदम भवति। ये सब छद्मस्थों के ज्ञानों को यहाँ लिया और सबके साथ वो क्षयोक्षमिक बात बताएंगे, है ना। ये प्रश्न चिन्ह डालना है यहाँ पर। इनमें से प्रथम मति अज्ञान का कथन करते, किसको कहना क्या उस बता रहे। मत्य ज्ञान यानी मति अज्ञान का कारण दो प्रकार का है, द्रव्य कारण और भाव कारण। उनमें से द्रव्य कारण मति अज्ञान का निमित्तभूत द्रव्य है। देखो दो कारण कौन से लिए, द्रव्य कारण और भाव कारण। द्रव्य कारण में मति अज्ञान का निमित्तभूत द्रव्य वह कर्म और नवकर्म के भेद से दो प्रकार का है। कर्म द्रव्य कारण तीन प्रकार का है, बंध कर्म द्रव्य, उदय कर्म द्रव्य और सत्व कर्म द्रव्य। यानी जो मति अज्ञान का निमित्तभूत जो कर्म है उसके बंध उदय और सत्ता ऐसे तीन भेद पड़ेंगे। अथवा यह कर्म द्रव्य अवग्रहावरण आदि के भेद से अनेक प्रकार का है। जैसे ज्ञान के भेद है अवग्रह या अवाय धारणा, वैसे उसमें भी चले जाएंगे उसके भेद। नो कर्म द्रव्य तीन प्रकार का है, यानी अज्ञान के मति अज्ञान के कारणभूत ऐसे जो अन्य जो बताए हैं, नो कर्म द्रव्य तीन प्रकार का है। सचित्त नौ कर्म द्रव्य, अचित्त नौ कर्म द्रव्य और मिश्र नौ कर्म द्रव्य। इसमें जो अन्य बाह्य पदार्थ जो है मति अज्ञान के कारणभूत, उसको यहाँ लिया है। सचित्ते में वो अन्य कुगुरों आदि भी ले सकते, उसमें अचित्त में जो कुशास्त्र है उसको भी ले सकते हैं। ये मैंने अपनी ओर से मैं उदाहरण दे रही हूँ, यानी उसके कारण ये मति अज्ञान का निमित्त भूत में लेना है उसके, यानी कुमति ज्ञान के निमित्त भूत कारणों को यहाँ लेना है, सचित्त अचित्त और मिश्र में। इन द्रव्यों की जो मति अज्ञान को उत्पन्न करने वाली शक्ति है वह भाव कारण है। ये भाव कारण जीव में नहीं लिया, द्रव्य कारण में वो कर्म और नौकर्म को लिया और भाव कारण में वो कर्मों की शक्ति को लिया। जैसे कर्म कांड में भी एक शब्द ऐसा एक कथन आता है शुरुआत में ही, पांचवी छठी गाथा में ही उसमें, कि जो हम कर्म को द्रव्य कर्म कहते हैं और कर्म में जो राग आदि उत्पन्न करने की शक्ति है उस शक्ति को भाव कर्म कहते हैं। ये शक्ति तो एक्चुअली वो कर्म की है और उपचार से जीव का वैसा परिणमन होता है तो उसको भी भाव कर्म कहने में आता है। हम तो द्रव्य कर्म यानी जड़ कर्म और भाव कर्म यानी जीव के परिणाम ऐसा तो वो कहते भी और ऐसा ही कथन आता है सर्वत्र, परंतु मूल में ये भाव में किसको लेना, वो कर्म का भाव, कर्म की शक्ति। यानी वहां तो कहे कर्म में राग आदि उत्पन्न करने की शक्ति है और जीव में उस रूप परिणमने की शक्ति है। यहाँ लिखा ना उन द्रव्यों की, द्रव्य नहीं हो को कर्म नो कर्म की मति अज्ञान को उत्पन्न करने वाली शक्ति है वह भाव कारण है। इन सब कारणों से जो मति अज्ञान होता है, ये अभी जीव में लेना, वह जिस जीव के पाया जाता है वह मति अज्ञानी होता है। वह कैसे अर्थात किस प्रकार से होता है यह कहा गया है। इसी प्रकार शेष ज्ञानों के विषय में भी कहना चाहिए। अब शंकाकार कहते हैं, पहले उन्होंने मति अज्ञान का अर्थ बताया, यहां शंकाकार कहता है कि अज्ञान ऐसा कहने पर क्या ज्ञान का अभाव ग्रहण किया है या ज्ञान का अभाव ग्रहण नहीं किया, अंतर के बदले अभाव लिखो वहां पर। क्योंकि ऊपर प्राकृत में यही बताया था ना, इत्त चुदो भनदी अन्नानम इदि उत्ते क्यों नानस अभावो घिप्पदी आहो न घिप्पदिति, यानी उसका अभाव ग्रहण करना है कि अभाव ग्रहण नहीं करना है। प्रथम पक्ष तो नहीं बनता, कौन सा, ज्ञान का अभाव, क्योंकि मति ज्ञान का अभाव मानने पर चूंकि मति पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है इसलिए श्रुत ज्ञान के भी अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। और ऐसा माना भी जा नहीं सकता क्योंकि मति और श्रुत दोनों ज्ञानों के अभाव में सभी ज्ञानों के अभाव का प्रसंग आता है। यानी मति श्रुत छद्मस्थ अवस्था में मति श्रुत ज्ञान तो पाए ही जाते हैं, यह मति अज्ञान श्रुत ज्ञान की बात चल रही है। ज्ञान के अभाव में दर्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि ज्ञान और दर्शन इन दोनों का परस्पर अविनाभावी संबंध है, तथा ज्ञान और दर्शन के अभाव में जीव भी नहीं रहता क्योंकि जीव का तो ज्ञान और दर्शन यही लक्षण है। यानी उन्होंने एक पक्ष प्रस्तुत किया शंकाकार ने, इनकी पद्धति है कि दो ऑप्शन देते हैं और स्वयं ही उसका निराकरण कर रहे हैं। शंकाकार स्वयं ही कहता है यहाँ ज्ञान के अभाव को अज्ञान कहा है या ज्ञान के अभाव यहाँ नहीं लेना, उससे अज्ञान शब्द से क्या समझना, तो स्वयं ने ही उसके पहला पक्ष रूल आउट किया गया कि अभाव मानने से बहुत सारे दोष आते हैं। मति ज्ञान का अभाव मानेंगे तो शुद्ध ज्ञान भी नहीं रहेगा, मति शुद्ध नहीं रहेगा तो जीव भी नहीं रहेगा क्योंकि ज्ञान के अभाव में जीव का भी अभाव हो जाएगा, ज्ञान के अभाव में दर्शन का भी अभाव हो जाएगा। अब दूसरा पक्ष कौन सा, कि ज्ञान का अभाव ग्रहण नहीं किया है, तो कहते वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि यदि अज्ञान कहने पर ज्ञान का अभाव न माना जाए तो फिर प्रतिषेध के फलाभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। प्रतिषेध यानी निषेध, निषेध का फल क्या है, ज्ञान का निषेध किया ना, अज्ञान कहने से ज्ञान का निषेध कर दिया, तो फिर उसका कुछ अर्थ ही नहीं घटित होगा। अज्ञान का अर्थ क्या है, ज्ञान का निषेध तो कर रहे हैं, तो उसका अभाव नहीं होता ऐसा भी नहीं कह सकते, अभाव होना चाहिए, और अभाव होता है मानो तो उसमें क्या दोष है, वो भी दोनों ही दोष उसने सामने रख दिए। अब आचार्य उसका समाधान करेंगे। समाधान, इस शंका का परिहार कहते हैं, प्रथम पक्ष में कहे गए दोषों की प्रस्तुत में संभावना नहीं है। पहला कौन सा पक्ष रखा था, कि ज्ञान का अभाव यहाँ बताना चाहते हैं क्या, तो कहते नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रसज्ज प्रतिषेध से अर्थात अभाव मात्र प्रयोजन नहीं है। क्या कहना चाहते हैं, प्रसज्ज प्रतिषेध, प्रसज्ज यानी प्रत्यक्ष, उसका निषेध करना यानी अभाव, प्रसज्ज प्रतिषेध का ही दूसरा अर्थ है अभाव। देखो डिक्शनरी में कहीं पर प्रसज्ज का अर्थ नहीं आया, परंतु प्रसज्ज अभाव नाम का यह अभाव पाया जाता है। देखो यहाँ प्रसज्ज अभाव का मैं सिद्धांत कोष में बता रही हूँ, जो प्रत्यक्ष न हो सो अप्रत्यक्ष, ऐसा प्रसज्ज अभाव है। अभी जो हम यहाँ सातवें में यहाँ पढ़ रहे हैं, दो नौ चार, हाँ यानी उसका अर्थ ऐसा ही किया है कि प्रसज्ज के द्वारा केवल अभाव मात्र समझा जाता है, यानी मात्र अभाव ऐसा उसका अर्थ नहीं करना। प्रसज्ज अभाव ने, प्रसज्ज का अर्थ प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का निषेध करना यानी अभाव करना। यहाँ कहते अभाव मात्र प्रयोजन नहीं है, यहाँ अज्ञान कहने से उसके अभाव कहने का हमारा प्रयोजन नहीं है। दूसरे पक्ष में कहा गया दोष भी नहीं आता, यहाँ इन्होंने एक रेफरेंस दिया है 29479, ऊपर पेज के ऊपर जो नंबरिंग दिए है ना, वो नंबरिंग कैसे देते पूछा नहीं, 29479 ये पेज नंबर 479 निकालना, मुझे अभी मिला जो वहां का विशेष अर्थ निकालो। पेज नंबर 479 इसी पुस्तक के धवला के नीचे का विशेषार्थ देखो, अभाव दो प्रकार का होता है, पर्युदास और प्रसज्ज। पर्युदास के द्वारा एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु का सद्भाव ग्रहण किया जाता है, और प्रसज्ज के द्वारा केवल अभाव मात्र समझा जाता है। यानी एक का अभाव है उसके अभाव में दूसरे वस्तु का ग्रहण किया जाता है, उसको पर्युदास अभाव कहते हैं। जैसे प्रत्यक्ष से जो अन्य वो अप्रत्यक्ष वो बताना है तो पर्युदास हुआ। यानी एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु का सद्भाव ग्रहण करना वो हुआ पर्युदास अभाव। और प्रसज्य अभाव यानी अभाव मात्र ग्रहण करना, यानी डायरेक्ट अभाव बताना। वहां क्या विषय हो रहा था पेज 479 पर, निरंतर कहा था, अंतर का अभाव इसलिए निरंतर कहा, वो पर्युदास अभाव हुआ। जो नहीं कहना चाहते उसका अभाव कहते हैं, ये प्रत्यक्ष नहीं उसको अप्रत्यक्ष कहेंगे इस तरह से। यहाँ तो टोटल अभाव, ऐसा यहाँ प्रयोजन नहीं था। अब दूसरे पक्ष भी हमने अभी उसकी उसकी बात करेंगे। पेज नंबर अपने 85 पर आते हैं, फिर पढ़ते समाधान को, शंका का परिहार कहते। प्रथम पक्ष में कहे गए दोषों की प्रस्तुत में संभावना ही है। शंकाकार ने दो पक्ष लिए थे, क्या अज्ञान से ज्ञान का अभाव समझना क्या, तो कहते नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रसज्ज प्रतिषेध से अर्थात अभाव मात्र प्रयोजन नहीं है, यानी उसका अभाव कहने का यहाँ प्रयोजन नहीं है। अज्ञान कहने से ज्ञान का अभाव ये हमारा प्रयोजन नहीं है। दूसरे पक्ष में कहा गया दोष भी नहीं आता। दूसरे में क्या गया कि ज्ञान का अभाव ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि यहाँ तो अज्ञान शब्द से ज्ञान का प्रतिषेध किया गया है। उसकी आत्मा को छोड़ योग्य सन्निकर्ष रूप स्थान में स्थित समस्त द्रव्यों में स्वपर विवेक के अभाव रूप सफलता पाई जाती है। देखो ज्ञान किसको कहना, देखो अज्ञान से क्या कहा, ज्ञान का निषेध किया। वो ज्ञान शब्द से क्या समझना कि अपने आत्मा को छोड़कर योग्य सन्निकर्ष रूप स्थान में स्थित, यानी यथा योग्य संयोग में स्थित, या सन्निकर्ष ने उसके निकट हो या दूर उसके गेय रूप से हो, समस्त द्रव्यों में, यानी अपने आत्मा को छोड़कर समस्त पर द्रव्यों में स्वपर विवेक के अभाव रूप सफलता पाई जाती है। किसमें, अज्ञान में स्व विपर विवेक का अभाव है। देखो फिर से पढ़ती हूँ, अज्ञान शब्द से ज्ञान का प्रतिषेध किया गया है, और वो अज्ञान का कार्य क्या हो रहा है, स्वपर विवेक के अभाव रूप सफलता हो रही है। समझ में आई ना बात, ये वाक्य थोड़ा अटपटा है। अज्ञान की सफलता किसमें है, स्वपर के विवेक का अभाव है। हाँ, अर्थात स्वपर विवेक से रहित जो पदार्थ का ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान होता है, उसे यहाँ अज्ञान कहा है। विवेक से रहित अज्ञान किसको कहना, भेद ज्ञान नहीं है। हाँ वही अज्ञान, यानी जो सम्यक ज्ञान नहीं वो अज्ञान, यानी मिथ्या ज्ञान को यहाँ अज्ञान कहा। क्योंकि ये मति अज्ञान शुद्ध अज्ञान कैसे है, तो क्षव शमिक भाव है, तो इसमें वो सम्यक ज्ञान नहीं पाया जाता, परंतु ज्ञान का उघार तो है, इसलिए उसको क्षव शमिक घटित करेंगे उसको। यहाँ लिखा ना, स्वपर विवेक से रहित जो पदार्थ का ज्ञान होता है, उसे यहाँ अज्ञान कहा है। फिर शंका पूछते हैं, तो यहाँ सम्यक दृष्टि के ज्ञान का भी प्रतिषेध क्यों न किया जाता, क्योंकि विधि और प्रतिषेध रूप भाव से मिथ्या दृष्टि ज्ञान और सम्यक दृष्टि ज्ञान में कोई विशेषता नहीं है। यहाँ कहते ना ज्ञान का निषेध नहीं कर रहे हम, तो कहते यहाँ तो सम्यक ज्ञान का तो निषेध कर ही रहे ना, यह इसका उनका प्रश्न है, उसका समाधान कहते हैं। यहाँ अन्य पदार्थों में परत्व बुद्धि के अतिरिक्त पदार्थ सामान्य की अपेक्षा प्रतिषेध नहीं किया गया है। क्या कहना चाहते हैं कि हमने इस पेन को जाना, ये पदार्थ सामान्य, इसको जाना, तो जानने का निषेध नहीं है, परंतु कैसा जाना है, परत्व बुद्धि के अतिरिक्त अन्य कोई गलत नहीं हुई, इसमें ये पर है ऐसा नहीं जाना, बस इतनी बात हुई। सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में क्या अंतर है? सम्यक ज्ञान है वह स्वपर भेद सहित जान रहा है, उसने गणित जाना, भूगोल जाना, बाकी सब चीजें जाने, जो कुछ बातें बाकी जान रहे, उसने भी घर को जाना, सब जाना है। सम्यक दृष्टि के ज्ञान में उसके ज्ञान में क्या विशेषता है? सम्यक दृष्टि ने उसको स्वपर विवेक सहित जाना, और इसने उसमें, वो जानना तो जानना है, उसमें क्या है, पर उसने स्वपर विवेक नहीं था। यहां लिखा ना बुद्धि, लिखा ना अन्य पदार्थों में परत्व बुद्धि उसके अतिरिक्त, यानी मिथ्या दृष्टि में और सम्यक दृष्टि के ज्ञान में क्या अंतर है? कि सम्यक दृष्टि के ज्ञान में वो परत्व बुद्धि है, पर को जानते हुए उसके परत्व बुद्धि पड़ी है, यानी ये पर है ऐसा उसने जाना है, और मिथ्या दृष्टि वो स्वपर का भेद उसमें नहीं जान रहा है। तो ये परत्व बुद्धि को छोड़कर पदार्थ सामान्य की अपेक्षा प्रतिषेध नहीं किया है, यानी पदार्थ सामान्य के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, इसने भी वस्त्र को वस्त्र जाना, उसने भी वस्त्र को वस्त्र जाना, परंतु उसने वो पर रूप जाना, इसने उसमें कोई भेद नहीं जाना। तो कहते कि पदार्थ अन्य पदार्थों में परत्व बुद्धि के अतिरिक्त पदार्थ सामान्य की अपेक्षा प्रतिषेध नहीं किया गया है, जिससे कि सम्यक दृष्टि के भी प्रतिषेध हो जाए, क्योंकि पदार्थ सामान्य का निषेध करेंगे तो सम्यक दृष्टि के भी ज्ञान में तो वही बात आई थी, उसका भी निषेध हो जाए। किंतु अपने द्वारा ज्ञात वस्तु में विपरीत श्रद्धा उत्पन्न कराने वाले मिथ्यात्व के उदय के बल से, समझ में आई बात, कि ज्ञात हो रहा है अपने द्वारा, उस वस्तु में विपरीत श्रद्धा उत्पन्न करने वाला मिथ्यात्व का उदय है, उसके बल से जिस पदार्थ के विषय में जीव में श्रद्धा नहीं उत्पन्न होता, उस पदार्थ के विषय में जो ज्ञान होता है वह अज्ञान कहलाता है, क्योंकि उसके ज्ञान का फल नहीं पाया जाता। ज्ञान का फल कैसा है? तो जैसा जो वस्तु वैसा उसको जानना, ये तो विपरीतता हो रही ना, परत्व बुद्धि उसके नहीं है, उसके अंदर स्वत्व बड़ा है। अब कहते हैं शंका, घट पट स्तंभ आदि पदार्थों में मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान अनुसार श्रद्धान पाया तो जाता है। आप कहेंगे जैसा वो घटपट पदार्थों को जैसा समय दृष्टि जान रहा है वैसे वो भी जान रहा है, उसका श्रद्धान भी वैसा ही है, पट को पट ही जान रहा है। तो कहते हैं नहीं, क्योंकि उस जीव के उस ज्ञान में भी अनध्यवसाय अर्थात अनिश्चय देखा जाता है, और यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि यह ऐसा ही है ऐसे निश्चय का वहां अभाव होता है। अनध्यवसाय उसी को कहते हैं, ऐसा ही है ऐसा निश्चय नहीं है, उसमें वहां तो स्वपर विवेक नहीं है उसका, उस सहित उसका जानना वो अनध्यवसाय कहता है। अथवा जिस प्रकार दिशा के संबंध में विमूढ़ जीव, यानी दिशाओं का जिसे ज्ञान नहीं है ऐसा जीव, वर्ण गंध रस और स्पर्श वे जिस प्रकार अवस्थित है, उस प्रकार से ज्ञान का श्रद्धान करता हुआ भी अज्ञानी कहलाता है, क्योंकि इसके जिस दिशा में वे अवस्थित है उस प्रकार के ज्ञान पूर्वक श्रद्धान का अभाव है। इसी प्रकार स्तंभादि पदार्थों में यथा ज्ञान श्रद्धा करता हुआ भी अज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि उसके जिन भगवान के वचन में श्रद्धान का अभाव है अतः अज्ञानी कहलाता है। यानी मिथ्यात्व के कारण उसको अज्ञान कहते हैं, इसका तात्पर्य यही सब घटित हो जाता है। उसके लिए उन्होंने दिशाओं का और स्पर्श रस गंध वर्ण का वगैरह उदाहरण देके इसी बात को समझाया है। यानी यहाँ अज्ञान शब्द से मति अज्ञान जो कह रहे हैं वो कुमति ज्ञान ये समझना, मिथ्यात्व के उदय सहित वाला जो ज्ञान है। तो ये क्यों होता है, कैसे हो जो पाया जाता है? तो खवो समयाय लब्धि है, क्षाव शमिक लब्धि से जीव मति अज्ञानी आदि होता है। क्योंकि ये सभी को एक साथ पूछा गया था, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान और बाकी जिसको अभिनिबोधि कहते हैं, मति, श्रुत, अवधि और मनपर्य, ये सारे क्षाव शमिक भाव है। तो सबको इकट्ठा बताते हैं, तो कहते ये सब किससे क्यों होते हैं? क्षावशमिक लब्धि से जीव मति अज्ञानी आदि होता है, क्योंकि ये सारे ही क्षावशमिक भाव है, तीन अज्ञान और चार ज्ञान क्षावशमिक भाव है। शंका, मति अज्ञानी जीव के क्षावशमिक लब्धि कैसे हो सकती है? समाधान, क्योंकि उसके मति मत्य है ना, मति अज्ञान, तो मति अज्ञान आवरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों के उदय से मत्य ज्ञानीपना पाया जाता है। जैसे क्षोभशम की परिभाषा हमने घटित की, तो वहां तो हमने केवल एक एक इंद्रियों पर उसको भी घटित किया था, और यहाँ मति ज्ञान आवरण को कहेंगे तो वो सम्यक मति ज्ञान होगा। ये तो मति अज्ञान जो है उस संबंधी भी आवरण है, उसको यहाँ घटित करना है। फिर शंका पूछते हैं, यदि देशघाती स्पर्धकों के उदय से अज्ञानीपना होता है तो अज्ञानीपने के उदयपने का प्रसंग प्राप्त होता है, तो उसको उदय कहो, क्योंकि उसके उदय से हुआ है ना। समझ में ये प्रश्न क्या है? फिर से पढ़ते हैं, देशघाती स्पर्धकों के उदय से अज्ञानीपना होता है तो अज्ञानीपने के उदयपने का प्रसंग आता है, क्योंकि जिसको उदय से हो उसको उदय कहते हैं, और आप कह रहे हो देशघाती का उदय है तो उसको उदय भाव कह दो। समाधान, नहीं, क्योंकि उसके सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव है। यानी वो उदय का अभाव और उदय, इस तरह से वो जोड़ रूप सर्वघाती देशघाती का कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसको क्षोभशम कहेंगे। हाँ, शंकाकार पूछते हैं, तो फिर अज्ञानीपने में क्षोभशमिकता क्या है? क्योंकि यहाँ क्षोभशम में हम अज्ञान घटित कर रहे हैं, आगे जाके औदयिक में भी अज्ञान घटित करेंगे। वो औदयिक वाला अज्ञान और क्षोभशमिक वाला अज्ञान में क्या अंतर है, हमने बहुत बार मैंने बताया था। एक है क्षोभशमिक अज्ञान और एक है औदयिक अज्ञान। औदयिक अज्ञान है, औदयिक अज्ञान है जो कुछ नहीं जान रहा है, वो सारा औदयिक अज्ञान है। जो भाषाएं हमें मालूम है वो हमारे क्षोभशमिक ज्ञान है, और जो भाषाएं हम नहीं जानते, जो अन्य चीजें हम नहीं जान रहे, वो सारा हमारा औदयिक अज्ञान है। हमें अवधि ज्ञान नहीं, मनपरे ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान नहीं, वो सारा हमारा औदयिक अज्ञान है। तो यहाँ कहते हैं अज्ञानीपने में क्षोभशमिकता क्या है, उसका समाधान 87 पेज पर, आवरण के रहते हुए भी आवरणीय ज्ञान का एक देश जहां पर उदय में पाया जाता है। यानी ज्ञान का अंश वहां प्रकट है और आवरणीय कर्म का उदय भी है। यहां लिखे दे, आवरण के रहते हुए भी आवरणीय ज्ञान का एक देश जहां पर उदय में पाया जाता है उसी भाव को क्षौक्षमिक नाम दिया गया है। इसलिए अज्ञान को क्षौक्षमिकपना विरोध को प्राप्त नहीं आता, अथवा ज्ञान के विनाश का नाम क्षय है, उस क्षय को उपशम का नाम एकदेश क्षय है। क्षय के चाहिए ना, क्षय को क्यों कहा, क्षय के चाहिए। क्षय के उपशम का नाम एकदेश क्षय है, उसकी क्षोपशम संज्ञा है। ऐसा क्षोपशम होने पर जो ज्ञान या अज्ञान उत्पन्न होता है उसी को क्षोपशमिक लब्धि कहते हैं। इसी प्रकार श्रुता ज्ञान यानी श्रुता ज्ञान, विभंग ज्ञान, आभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपरे ज्ञान को भी क्षौपशमिक भाव कहना चाहिए। विशेषता यह है इन सब ज्ञानों में अपने अपने आवरणों के देशघाती स्पर्धकों के उदय से क्षौपशमिक लब्धि होती है, ऐसा कहना चाहिए। समझ में है ना ये बात, यानी उनके देशघाती का उदय है, सर्वघाती सत्ता में पड़े हैं, उदय में नहीं आ रहे हैं, वो पूरी परिभाषा घटित करेंगे हर एक पर। फिर शंकाकार पूछते हैं इन सातों ज्ञानों के साथ ही आवरण क्यों नहीं होते हैं? समाधान, नहीं होते क्योंकि पांच ज्ञानों के अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञान नहीं पाए जाते, किंतु इससे मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान का अभाव भी नहीं होता, क्योंकि उनका यथाक्रम से आभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान में अंतर्भाव हो जाता है। यानी उसी में वो ज्ञानावरण उसका अलग से नहीं बताया है, उसी में अंतर्भाव हो जाता है उसका, क्योंकि ज्ञान में निमित्त तो मति ज्ञानावरण वगैरह ही पाया जाता है उसमें, उसका क्षोभक्षम। बाकी उसमें जो मिथ्यापना है वो तो मिथ्यात्व के उदय से आ जाता है। शंका, यहां पहले इंद्रिय मार्गणा और योग मार्गणा में सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से, उन्हीं स्पर्धकों के सत्वोपशम से तथा देशघाती स्पर्धकों के उदय से क्षायोपशमिक भाव की प्ररूपणा की गई है, किंतु यहाँ पर सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय और उनके सत्वोपशम इन दोनों का प्रतिषेध करके केवल देशघाती स्पर्धकों के उदय से ही क्षौपशमिक भाव होता है, ऐसा प्ररूपण करने वाले स्ववचन विरोध दोष क्यों नहीं होता? सर्वघाती का उदय वगैरह वो बातें क्यों नहीं बताई? तो कहते उसका समाधान नहीं, क्योंकि यदि सर्वघाती स्पर्धकों के उदय क्षय से संयुक्त देशघाती स्पर्धकों के उदय से ही क्षौपशमिक भाव मानना इष्ट हो तो स्पर्शनेन्द्रिय, काय योग, मति ज्ञान तथा श्रुत ज्ञान इनके क्षौपशमिक भाव प्राप्त नहीं होता, क्योंकि स्पर्शनेन्द्रियावरण, वीर्यांतराय, मति ज्ञानावरण तथा श्रुत ज्ञानावरण इनके सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का सब काल में अभाव है। और इससे स्ववचन में विरोध भी नहीं आता, क्योंकि इंद्रिय मार्गणा और योग मार्गणा में अन्य आचार्यों के व्याख्यान क्रम ज्ञान कराने के लिए वहां वैसा प्ररूपण किया गया है। जो जिससे नियमता उत्पन्न होता है वह उसका कार्य होता है और वह दूसरा उसको उत्पन्न करने वाला कारण होता है, किंतु देशघाती स्पर्धकों के उदय के समान सर्वघाती स्पर्धकों का उदय क्षय नियम से अपने अपने ज्ञान का उत्पादक नहीं होता। क्योंकि क्षीण कषाय के अंतिम समय में अवधि और मनोपर्य ज्ञानावरणों के सर्वघाती स्पर्धकों के क्षय से अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान उत्पन्न होते हुए नहीं पाए जाते हैं। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, ये श्रेणी में क्या होता है उसके तो सर्वघाती स्पर्धक नष्ट होकर देशघातीपना हो जाता है ना, उसके देशघातीकरण हमने देखे थे आपको शायद याद होगा, तो देशघाती हो गया तो वहां वो सर्वघाती का उपशम ये बात घटित नहीं होती, इसलिए उसको नहीं कहा उन्होंने। परिभाषा वैसे नहीं बनाई, परिभाषा बनाने में कुछ दोष आता है, इसलिए केवल देशघाती का उदय इतना ही कह दिया उन्होंने। इसलिए अपने अपने देशघाती के उदय से क्षौक्षम की लब्धि होती है ऐसा कह दिया उन्होंने। और जो जो यहाँ बताए थे ना, स्पर्शन इंद्रिय वीर्यांतर वगैरह मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इनके सर्वघाती का कभी उदय कभी भी नहीं होता है, इसलिए वहां उसकी परिभाषा में उसको ले लिया, वो तो अन्य में ऐसी परिभाषा नहीं बनाएंगे, यही रुकेंगे अभी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तकनम सदा देव।